प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीव वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
तेरी प्रभु जी हूँ मैं दासी, तेरी प्रभु जी दया करो हे जग के स्वामी, दया करो हे जग के स्वामी। हूँ मैं दासी तेरी प्रभु जी हूँ मैं दासी, तेरी प्रभु जी।
प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु परमेश्वर के महान और पवित्र नाम में आपको हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। स्वाइये आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, किंतु कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, आप जो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, बड़ी दीनता के साथ अपने सिर को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर क्षण हमको दिए कि हम आपके चरणों में बैठकर आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली समस्त बाधाओं को आप दूर कर दें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम पुराने नियम से इतिहास की प्रथम पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते रहे हैं। आज हम इसके अंतिम अध्याय पर जा रहे हैं। प्रथम इतिहास के अंतिम अध्याय में हम जिन विषयों का अध्ययन करेंगे वे हैं राजा दाऊद द्वारा प्रजा को प्रोत्साहित किया जाना तथा दाऊद की प्रार्थना। और जैसे ही हम 29वें अध्याय पर आते हैं, महत्व मंदिर पर से हटकर राज्य पर चला जाता है और अब मंदिर की अपेक्षा राज्य महत्वपूर्ण विषय बन जाएगा। दाऊद के जीवन के इन अंतिम क्षणों में ये बात उसके मस्तिष्क में है कि समस्त इसराइल राज्य का केंद्र मंदिर होगा, अर्थात परमेश्वर का भवन समस्त इसराइल का केंद्रीय बिंदु होगा। मित्रवर, ये प्रजा के लिए दाऊद का अंतिम संदेश है जिसे हम सुनने जा रहे हैं। और आपको स्मरण होगा, जब वृद्ध याकूब का अंतिम समय निकट आया तो उसने अपने सारे पुत्रों को अपने समीप बुलाया और उन्हें अपना अंतिम संदेश दिया। और जब प्रभु के सेवक मूसा अपने जीवन के अंत के समय पहुंचे तो उन्होंने समस्त 12 गोत्रों को बुलाकर उन्हें अंतिम संदेश दिया। और अब जबकि राजा दाऊद अपने जीवन के अंत के निकट पहुंच रहे हैं तो उनके पास भी अपने लोगों को देने के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। सो आइए हम उस संदेश को आरंभ करते हैं। इतिहास की प्रथम पुस्तक उसका 29वां अध्याय 1-5 पदों को देखिए, जहां इस प्रकार से लिखा है, राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान जिसे परमेश्वर ही ने चुना है अब तक सुकुमार लड़का ही है और अनुभवहीन है और काम भारी है, क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं परंतु यहोवा परमेश्वर के लिए है। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कांसे की वस्तुओं के लिए कांसा, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर और पच्चीकारी के काम के लिए रंग बिरंगे पत्थर और हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। इसलिए कि मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इन सब वस्तुओं के अतिरिक्त जो मैंने पवित्र मंदिर के लिए दे दी है, सोने चांदी का अपना भंडार भी अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं, अर्थात 3,000 के कार सोना जो ओपीर का सोना है और 7,000 के कार चोखी चांदी भवनों की दीवारों पर मढ़ने के लिए और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी कारीगरों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक काम के लिए देता हूं। इसलिए आज के दिन अपने आप को यहोवा के लिए समर्पित करने को कौन तैयार है। प्रिय मित्र, यहां हमें बताया गया है कि राजा दाऊद ने सारा समय परमेश्वर के भवन की तैयारी में खर्च किया है और अब उसने सारी सभा को बुलाया है और सारी सभा को संबोधित करते हुए दो बातों को स्पष्ट किया है। पहली बात, मेरा पुत्र सुलेमान अनुभवहीन अर्थात नौसिखिया है। दूसरी बात, ये भवन मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर यहोवा के लिए है, जैसा कि हम प्रथम पद में पढ़ते हैं। मैंने अपनी ओर से सारी तैयारी कर डाली है क्योंकि मेरा मन अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में लगा है। जब दाऊद ऐसा कहता है कि मेरा मन अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में लगा है तो इसका क्या अर्थ है? मेरे मित्र, इसका अर्थ है कि दाऊद ने सबसे प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को दिया है और उसके भवन को दिया है। जब आप कहते हैं कि मेरा मन परमेश्वर में लगा है या परमेश्वर की सेवा में लगा है, इसका तात्पर्य यह होना चाहिए कि आपकी प्राथमिकता परमेश्वर और परमेश्वर की सेवा है। अब इसलिए वह यहां पर घोषणा करता है, दाऊदियां घोषणा करता है कि इस सारी तैयारी के अतिरिक्त जो कुछ व्यक्तिगत रूप से मेरा है वो भी मैं परमेश्वर के भवन के लिए देता हूं, जैसा कि तीसरे पद में हमने पढ़ा, इसलिए कि मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इन सब वस्तुओं के अतिरिक्त जो मैंने पवित्र मंदिर के लिए दे दी हैं, सोने चांदी का अपना भंडार भी अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। मित्रवर, ये व्यवहार दाऊद की परिपक्वता को दर्शाता है। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में दाऊद कैसा परिपक्व हो गया है, हम इस कथन के द्वारा जान सकते हैं। मेरे मित्र, आज दाऊद के समान हम अनेक परिपक्व मसीही विश्वासी भक्तों को देखते हैं, जिन्होंने अपनी विशाल धन संपत्ति को परमेश्वर के इस कलीसिया रूपी भवन निर्माण के लिए अर्पित कर दिया। हमारा देना परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों की परिपक्वता और घनिष्ठता को दर्शाता है। आइए हम राजा दाऊद से सीखें कि परमेश्वर से कैसा प्रेम करें, उसे अपने जीवन में कैसे प्राथमिकता दें। दाऊद ने न केवल इसराइल प्रजा के सामने एक आदर्श रखा, वरन उसने मेरे और आपके सामने भी आदर्श रखा है। वो हमारे लिए उदाहरण है। ये वास्तव में परमेश्वर की संतान होने का प्रमाण है। हमें परमेश्वर से कैसा प्रेम करना चाहिए, हमें परमेश्वर के समक्ष अपने जीवन को किस प्रकार समर्पित करना चाहिए, हमारे संबंध परमेश्वर से कैसे होने चाहिए, हमें किस प्रकार से परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए, हम दाऊद से सीख सकते हैं। सर्वप्रथम दाऊद ने उनके समक्ष स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, जैसा कि हमने तीसरे पद में पढ़ा, और तब उसने उन्हें चुनौती दी, जैसा कि हम पांचवें पद में पढ़ते हैं, और उसने उनको इस प्रकार से चुनौती दी, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी कारीगरों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक काम के लिए देता हूं, इसलिए आज के दिन अपने आप को यहोवा के लिए अर्पित करने को, अर्थात समर्पित करने को कौन तैयार है। ये दाऊद की चुनौती है उसके लोगों के लिए। तब अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं, तब पूर्वजों के घरानों के प्रधानों और इसराइल के गोत्रों के प्रधानों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजकीय अधिकारी गण ने स्वेच्छापूर्वक अपने आप को समर्पित किया। यह हुआ दाऊद की चुनौती का परिणाम। इसराइल के गोत्रों के प्रधानों ने और सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने, सहस्त्रपतियों, शतपतियों, अधिकारीगणों ने स्वेच्छापूर्वक अपने आप को समर्पित किया। किस काम के लिए? परमेश्वर के भवन के निर्माण की सेवा के लिए। तब आगे हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर के भवन की सेवा के लिए उन्होंने 5,000 किक्कार और 10,000 दरकमोन सोना, 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार कांसा और 1,00,000 किक्कार लोहा दे दिया। और जिनके पास जवाहरात थे उन्होंने यहोवा के भवन के खजाने के लिए उन्हें गेरशोनी अहेल के हाथ में दे दिया। तब लोग आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने संपूर्ण हृदय से एवं स्वेच्छापूर्वक यहोवा के लिए दिया था, और दाऊद राजा भी बहुत आनंदित हुआ। मित्रवर, यहां पर हम देखते हैं कि सब ने स्वेच्छापूर्वक अपने आप को अर्पित कर दिया, और इस स्वेच्छापूर्वक समर्पण का फल आनंद के रूप में दिखाई दिया। न उन्होंने केवल अपने आप को समर्पित किया, वरन जो कुछ उनके पास धन संपत्ति के रूप में था वो भी परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित किया, और इसका परिणाम आनंद के रूप में उनके समक्ष आया। तब दसवें पद में हम पढ़ते हैं, तब समस्त मंडली के सामने दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा इसराइल के परमेश्वर, हमारे पिता, तू अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। ध्यान दें, दाऊद परमेश्वर को इसराइल का पिता कहकर संबोधित कर रहा है। पुराने नियम में परमेश्वर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत पिता नहीं कहलाया। दाऊद ने कभी परमेश्वर को पिता नहीं कहा। परमेश्वर ने दाऊद को अपना सेवक कहा। मूसा की व्यवस्था कभी भी किसी को परमेश्वर की संतान नहीं बनाती। केवल मसीह यीशु पर विश्वास लाने के द्वारा ही हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हमें परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा ही प्राप्त होता है, जैसा कि हम यूहन्ना की सुसमाचार के प्रथम अध्याय के 12वें पद में पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। है ना ये रुचिकर बात। पुराने नियम में, मूसा की व्यवस्था में किसी को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार नहीं मिलता, किंतु प्रभु यीशु मसीह में हमको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है और हम उसको व्यक्तिगत रूप से अपना पिता भी कहकर संबोधित कर सकते हैं। अग्रिम पदों में हम दाऊद की एक महान प्रार्थना पर दृष्टि करने जा रहे हैं, और ये व्यक्तिगत या पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, ये राज्य स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की प्रार्थना है। ये धन्यवाद की प्रार्थना है। आप चाहें तो इसके द्वारा धन्यवाद की प्रार्थना करना सीख भी सकते हैं। इस प्रार्थना में सर्वप्रथम दाऊद परमेश्वर की सराहना करता है, उसे पहचानता है, उसकी आराधना करता है, उसे अपने स्थान पर देखता है। अर्थात परमेश्वर जो है, दाऊद उसे उसी रूप में देखता है, और तत्पश्चात वह परमेश्वर का धन्यवाद देता है। दाऊद कहता है, हे यहोवा इसराइल के परमेश्वर, हमारे पिता, तू अनादिकाल से अनंतकाल तक धन्य है। हे यहोवा, महिमा, सामर्थ्य, गौरव, विजय एवं ऐश्वर्य तेरे ही हैं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में की समस्त वस्तुएं तेरी ही हैं। हे यहोवा, राज्य तेरा ही है और तू ही सबों के ऊपर प्रधान एवं महान ठहरा है। तब 12वें पद में लिखा है, धन एवं प्रतिष्ठा दोनों तुझ ही से प्राप्त होते हैं और तू सबों पर राज्य करता है, और सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और प्रत्येक को महान करना एवं सामर्थ्य बनाना तेरे ही हाथ में है। मित्र, क्या आपने इन शब्दों को पहले भी कभी कहीं सुना है? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने जब उनसे कहा कि वह उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं, तब प्रभु जी ने उन्हें इसी प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया। मसीही लोग इस प्रार्थना को प्रभु की प्रार्थना के नाम से जानते हैं। इस प्रार्थना में ये स्वीकार किया गया है कि सब कुछ परमेश्वर का है और उसी के द्वारा है। दाऊद ने इस बात को समझ लिया कि राज्य परमेश्वर का है। नए नियम के प्रचार का ये मुख्य विषय है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर के राज्य से तात्पर्य है परमेश्वर के नियम तथा व्यवस्था का लागू होना। वो स्थान जहां परमेश्वर की व्यवस्था लागू होती है, परमेश्वर के नियम लागू होते हैं, वहां परमेश्वर का राज्य पाया जाता है। तब अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। पर मैं कौन हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हम इतनी उदारता से तुझे भेंट चढ़ाएं? क्योंकि समस्त वस्तुएं तेरी ही ओर से आती हैं और तेरे ही हाथों से पाकर हमने तुझे दिया है। क्योंकि हम तो तेरे आगे परदेशी हैं और अपने समस्त पूर्वजों के समान पराए। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान और आशा रहित हैं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, ये हमारी धन संपत्ति जो हमने तेरे पवित्र नाम का भवन बनाने के लिए जुटाई है, वह हमें तेरे ही हाथों से प्राप्त हुई है और सब तेरी ही है। और हे मेरे परमेश्वर, मैं ये भी जानता हूं कि तू हृदय को जांचता और खराई से प्रसन्न होता है। मैंने तो स्वेच्छा से ये सब कुछ दिया है और यहां उपस्थित तेरी प्रजा के लोगों को स्वेच्छा पूर्वक तुझे भेंट देते देखकर मुझे आनंद हुआ है। मेरे मित्र, ये बड़ी रुचिकर बात है कि मैं और आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर का है और परमेश्वर से है। परंतु जब हम स्वेच्छा से उसे कुछ देते हैं तो वह हमें आशीष देता है। हमारे मध्य अनेक लोग निर्धन और कंगाल हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को कुछ देना नहीं चाहते। वे स्वयं को निर्धन समझकर केवल लेने की इच्छा रखते हैं और इसलिए सदा निर्धन व कंगाल ही बने रहते हैं। परमेश्वर पिता हमें तभी आशीष देते हैं जब हम अपना हृदय खोलते हैं। बिना मुंह खोले आप कुछ खा पी नहीं सकते। 18 और 19 पदों में लिखा है, हे यहोवा हमारे पूर्वज अर्थात इब्राहिम इसहाक और इसराइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात सदा बनाए रख और उनके हृदयों को अपनी ओर लगाए रख और मेरे पुत्र सुलेमान को ऐसा सिद्ध हृदय प्रदान कर कि वह तेरी आज्ञाओं चेतावनियों और विधियों को माने और इन सब बातों का पालन करे और उस मंदिर का निर्माण करे जिसके लिए मैंने तैयारी की है। मित्र, यहां दाऊद एक बार पुनः अपने पुत्र सुलेमान के लिए प्रार्थना करता है। जहां तक योग्यता का प्रश्न है, दाऊद जानता था कि सुलेमान में कोई योग्यता नहीं है, किंतु परमेश्वर सुलेमान को पसंद करता था। सुलेमान परमेश्वर की पसंद था और इसलिए दाऊद ने सुलेमान को इसराइल का राजा बनाना स्वीकार कर लिया और इसलिए राजा दाऊद अपने पुत्र के लिए बार बार प्रार्थना करता है कि वह परमेश्वर के इस भवन का निर्माण कर सके। और यहां एक सुंदर प्रार्थना दाऊद की हमारे समक्ष है कि वह अपने पुत्र के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करता है। मेरे प्रिय मित्र, आप भी यदि आपके पास संतान है तो अपने पुत्र के लिए इसी प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। तब दाऊद ने समस्त मंडली से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा का तुम धन्यवाद करो। तब समस्त मंडली ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर उन्होंने यहोवा और राजा को दंडवत किया और दूसरे दिन उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान किए और यहोवा के लिए 1,000 बैल, 1,000 मेढ़े और 1,000 भेड़ के बच्चे अर्घ समेत होम बलि करके चढ़ाए और समस्त इसराइल के लिए बहुतायत से बलिदान चढ़ाए और उन्होंने उस दिन यहोवा के सामने बड़े आनंद से खाया और पिया और उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा बनाकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए उसका और याजक होने के लिए सादोक का अभिषेक किया। तब सुलेमान यहोवा के सिंहासन पर अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर बैठा और समृद्धशाली हुआ और समस्त इसराइल उसके अधीन हुआ और समस्त अधिकारीगण और शूरवीर और दाऊद राजा के समस्त पुत्रों ने भी सुलेमान राजा के अधीन रहने की शपथ खाई और यहोवा ने सुलेमान को समस्त इसराइल की दृष्टि में बहुत ऊंचा उठाया और वह राजकीय ऐश्वर्य प्रदान किया जो उससे पहले इसराइल में किसी राजा का ना हुआ था। मित्रवर, यहां पर हमने सुंदर बातों को पढ़ा और इस प्रकार समस्त मंडली ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और बलिदान चढ़ाए तथा सुलेमान को यहोवा के सिंहासन पर विराजमान किया और सादोक याजक का याजकीय सेवा के लिए अभिषेक किया। तब अग्रिम पदों में हम दाऊद की मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं, आइए देखें। और ईशे के पुत्र दाऊद ने समस्त इसराइल पर राज्य किया और इसराइल पर राज्य करने की उसकी अवधि 40 वर्ष की थी। हेब्रोन में उसने 7 वर्ष और यरूशलेम में 33 वर्ष राज्य किया और दीर्घायु होकर पूरे बुढ़ापे की अवस्था में तथा धन एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर वह मर गया और उसके स्थान पर उसका पुत्र सुलेमान राजा हुआ। और दाऊद राजा के सब कामों का वर्णन आरंभ से लेकर अंत तक शामुएल दर्शी की इतिहास और नातान नबी के इतिहास और गाद दर्शी के इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है, अर्थात जिसमें उसके समस्त राज्य और पराक्रम, परिस्थितियों और उस पर तथा इसराइल पर, देश देश के सब राज्यों पर बीती समस्त बातों का विवरण लिखा है। प्रिय मित्र, इन अंतिम पदों में हम राजा दाऊद की मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। ये वो अभिलेखा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप जानें कि परमेश्वर दाऊद के विषय में क्या विचार रखता है। संभवतः आप दाऊद को पसंद ना करें, किंतु परमेश्वर दाऊद को पसंद करता है और मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता है और उसको पसंद किया और उसने उसके साथ उचित व्यवहार किया, क्योंकि दाऊद एक मनुष्य मात्र ही था। जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे दंडित भी किया और जब उसने परमेश्वर के योग्य कार्य किया तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। ये बात मुझे प्रोत्साहित करती है। मित्रवर, मैं भी अति मानव हूं, मेरे भीतर मानव स्वभाव है, और मैंने अनुभव किया है कि परमेश्वर ने मेरे साथ दाऊद के समान व्यवहार किया है। कभी वह अनुग्रह पूर्ण रहा तो कभी कठोर हो गया। मेरे मित्र, प्रभु जी भले हैं, उनकी करुणा सदा की है। प्रभु जी बड़े अद्भुत हैं। मैं और आप प्रभु के लिए मंदिर नहीं बना सकते, किंतु हम इस मंदिर रूपी शरीर को उसे अर्पित कर सकते हैं। वह हमें प्राप्त करके बहुत कुछ प्राप्त नहीं करता, क्योंकि मनुष्य कीड़ा समान है, मिट्टी ही है, किंतु वह हमें प्राप्त करना चाहता है। जी हाँ मित्र, वो हमें फिर भी प्राप्त करना चाहता है, वो हमें अपना बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमारी सहभागिता से आनंदित होता है। इसलिए आज का दिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन बन सकता है, यदि आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो वास्तव में आपको एक अद्भुत आनंद प्राप्त हो सकता है। मेरे मित्र, क्या आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं? यदि हां, तो इसी क्षण आप परमेश्वर के समीप आएं, अपने पाप को स्वीकार करें और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपना प्राण दिया, वो गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए, ताकि वह अनंत काल तक आपकी रक्षा कर सकें, क्योंकि उनके जीवित होने के द्वारा ही हमारा जीवन भी सुरक्षित है, और उनके जीवन के द्वारा ही परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे।
प्रिय श्रोताओ, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और यदि आज के अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, हम आपकी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। श्रोताओ, हम आपको बता दें कि आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी है hindittb@radiovv.org, hindittb@radiovv.org। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।